మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోగణి మంగళం గుండకుందారో జైనధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం వందితు సర్వసిద్ధి భూమచల మనోవమంగదిం పత్తే ఉచ్చామి సమయ పావుడ సుద కేవలీ నమ సమయ సారాయ స్వామి చిత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచిత నిసంగ హే జో ఆయు సమ నిర్లేప హే ఆకాశ సే నిజ ఆత్మ మేహ విహరతే జీవనన పర కీ ఆస సే జినకే నికట సింహాది పశు భీ భూల జాతే క్రూరతా उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। गाथा पाठ सम्मत दंशन नाणम एसो लदैत्यनवरिववदेशम सौवनय पक्करहि సమయసారు సమ్యత్వరసు జిస్ ఏక కో సంజ్ఞా మిలే నయ పక్ష సకల విహీన భాషిత ఓ సమయ కా సార।
పక్షాతిక్రాంత కీ గాథా హై। जीव अनादि काल से पक्ष में ही पड़ा है, पक्षातिक्रांत नहीं हुआ, और इस गाथा को समझकर पक्षातिक्रांत होना चाहता है। एक प्रश्न है, हम समझने के लिए बैठे हैं या समाने के लिए बैठे हैं? दोनों ही का उत्तर गलत है। न समझने के लिए बैठे हैं न समाने के लिए बैठे हैं। गलत क्यों है? कि मैं समझन का पिंड हूं और मैं अनादि काल से अपने में समाया हुआ हूं। बात समझ में आ गई?
अभी तो बोलने को बात समझ में आ गई।
कमजोरी है। कि न समझने के लिए बैठे हैं न समाने के लिए बैठे हैं। कि मैं तो समझन का पिंड हूं और अनादि काल से अपने स्वरूप में समाया हुआ हूं। दूसरा प्रश्न कि समय नहीं है और पक्षातिक्रांत होना चाहते हैं, कोई छोटी सी विधि है क्या? शॉर्टकट। समय नहीं है और पक्षातिक्रांत होना चाहते हैं, तो पक्षातिक्रांत होने की कोई छोटी सी विधि हो, तीन बिंदु तो टीका में आ जाएंगे, चौथे काल का ज्ञान पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से मिल रहा है तो छोटी विधि भी होगी। चौथे काल का ज्ञान जीव को पंचम काल में मिल रहा है तो छोटी सी विधि भी होगी, है क्या नहीं? कि पक्षातिक्रांत होने के लिए कोई छोटी सी विधि हो तो बताओ, इसमें तो तीन बिंदु आएंगे और पहला ही बिंदु आज तक जीव ने पार नहीं किया, चर्चा करेंगे उसकी। तीन बिंदुओं की चर्चा है, चौथे काल का ज्ञान पांचवे काल में पिलाने वाले जब गुरु हैं तो छोटी विधि भी है। रजनी भाई, पक्षातिक्रांत होने की सबसे छोटी विधि क्या है? कि मैं अनादिकाल से पक्षातिक्रांत ही हूं, इतना स्वीकार कर, ये सबसे छोटी में छोटी विधि है। कि कभी मैं पक्ष में आया ही नहीं, पर्याय की भाषा में बोलना, पर्याय जितना मानना, पर्याय रूप अनुभव करना, ये सब पक्ष है। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा कभी पक्ष में आया ही नहीं, अनादिकाल से पक्षातिक्रांत है। बात समझ में आ गई? आज भी और अनादिकाल से जो त्रिकालीय चैतन्य ज्ञायक परमात्मा पक्षातिक्रांत है, ये कब पकड़ में आ जाए? कि कब पकड़ में आ जाए? इसके लिए वो कहते विधि क्या है, तो विधि दिखने में तो छोटी है भैया, लेकिन अभ्यास, और यदि यथार्थ अभ्यास हो जाए तो मोक्ष मार्ग दूर नहीं है। देखो पढ़ते हैं, श्रुत ज्ञान अवष्टम्बेन ज्ञान स्वभावम आत्मानम, इतना सामान्य कल पढ़ा था, आज विशेष, कि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवष्टम्बेन, कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस जीव ने समयसार ग्रंथादि राज की 415 गाथाएं पढ़ ली, आत्मख्याति याद है, द्वादशांग पूरा याद है, ये तो स्थापना, लेकिन उसमें से निकला क्या? कि यदि उसमें से ये चीज निकल गई हो कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अभी ये भी पर्याय की भाषा है, धीरे धीरे चलेगी, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं ये निकला, या 415 गाथाओं का ज्ञान निकला? बात समझ में आ गई? यदि 415 गाथाओं का ही ज्ञान निकला है तो दोबारा शुरू कर। बात समझ में आ गई? अब दोबारा कब तक शुरू करें? कि जब तक ज्ञान स्वभावी मैं चैतन्य त्रिकाली परमात्मा हूं, ये बात जब तक नहीं निकले, अब इसको निकालने के लिए कितना पढ़ना पड़े? कि भैया बात हम पढ़ने की नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या निकला है। बात समझ में आ गई? कि निकला क्या है? निकला मतलब सारभूत तेरे ज्ञान में क्या आया है। चौथी गाथा में क्या बताया? कि इस जीव ने अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथाएं सुनी है। बात समझ में आ गई? एकत्व विभक्त शुद्ध चैतन्य ज्ञायक परमात्मा की कभी चर्चा नहीं सुनी है। चर्चा सुनने की बात नहीं सुनी है, तो उस एकत्व विभक्त चैतन्य आत्मा को मैं बताऊंगा, ये बात है। तो एकत्व पर से विभक्त और अपने से एकत्व का अर्थ क्या है? कि ज्ञान पर्याय के लिए पक्षाति क्रांत चैतन्य ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा ये ही स्व है, उसके अलावा जितना भी है उस ज्ञान के पर्याय के लिए क्या है? पर ये यदि निकलता है तो तूने अभी शास्त्र में से अपने तरने के लिए कुछ निकाला है। ज्ञान स्वभावम आत्मानम शब्द है ना इसमें, जब आत्मा कहे तो ज्ञान स्वभाव याद आना चाहिए, और ज्ञान स्वभाव कहे तो आत्मा, मैं मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है कि ज्ञान का अर्थ क्या है कि पर्याय वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है, पर्याय वाला ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जैसे लालचंद भाई, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वो दूसरे बोल में आएगा मति ज्ञान के संबंध में, कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान पर्याय ज्ञान नहीं है, ज्ञान पर्याय। प्रकाश भाई ये चला रहे उस बात को कि पर से ज्ञान नहीं, पर का ज्ञान नहीं, पर है तो ज्ञान है ऐसा भी नहीं है, और वो पर्याय वाला ज्ञान है तो मैं हूं ऐसा भी नहीं है। समझ में आ गई बात कि मैं ज्ञान का पिंड हूं, पर्याय वाला ज्ञान वो ज्ञान मैं नहीं हूं। इसमें कौन सी बात लेनी कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम, कि ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है कि लिखा हुआ है ज्ञान, तो ज्ञान अकेला नहीं, इस ज्ञान के साथ अनंत गुण है। सर्वविशुद्ध अधिकार में आत्मा को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ को ज्ञान मात्र कहा, तो ज्ञान मात्र कहने का मतलब क्या कि वहां अकेले ज्ञान गुण की चर्चा नहीं। ये तो मुखिया है घर का, कौन सा? ये जो ज्ञान शब्द लिखा है, ज्ञान स्वभावम आत्मानम, कि ज्ञान स्वभाव, स्वभाव कौन सा कि पर्याय वाले स्वभाव की यहां चर्चा नहीं है, क्योंकि यहां दृष्टि के विषय की बात है, क्योंकि अनादि काल से जीव की दृष्टि नहीं बदली है, पर्याय तो बदलती रही, पर्याय बदलती रही लेकिन दृष्टि नहीं बदली है, कि पर्याय बदलती रही दृष्टि नहीं बदली। अब वो दृष्टि बदलने के लिए पर्याय वाले ज्ञान की यहां चर्चा नहीं है। क्या लिखा है? ज्ञान स्वभावम आत्मानम, कि पर्याय में, अभिप्राय में और वासना में अभी यदि भेद पड़ा हुआ है और बुद्धि से शुद्ध चैतन्य आत्मा की चर्चा करता हो तो अब भी मूल में भूल पड़ी हुई है, इसलिए कितना भी जोर दे दे दृष्टि के विषय पर जोर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कल भी ये बात अधूरी रह गई थी कि ज्ञान के काल में भी ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, क्योंकि अभिप्राय में, वासना में अभी वही बातें पड़ी हैं। आज एक चर्चा और भी करनी है कि लालचंद भाई कहते हैं प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। चेतन भाई जी ने भी प्रमाण का विषय लिया था। एक है सविकल्प ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, और एक है निर्विकल्प ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, ये दोनों मिलकर के प्रमाण है। क्या है? दोबारा कि सविकल्प ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा और एक निर्विकल्प ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, ये दोनों मिलकर प्रमाण है। इसके बाहर जाए तो पात्र नहीं और इसमें अटके तो निर्णय नहीं। निर्णय नहीं है तो अनुभव नहीं है। इसमें एक शब्द आया निश्चित। कौन सा शब्द आया है? निश्चित। प्रकाश भाई जी ने बेंसरी का वो प्रसंग लिया था ना कि चाहे दो अक्षर पढ़ ले, थोड़ा सा ही पढ़ ले, लेकिन उस थोड़े से पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि न हो, ज्ञान का लक्ष्य तय हो। बात समझ में आ गई? लक्ष्य किसे कहते हैं? कि जिस पर से लक्ष्य हटे वो लक्ष्य लक्ष्य ही नहीं है। जिस पर से लक्ष्य नहीं हटे वो वास्तव में लक्ष्य है। बात समझ में आ गई? कि मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो फल है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। मैं तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य वस्तु हूं, वो मेरा लक्ष्य है। बात समझ में आ गई? उस लक्ष्य पर टिकने वाले का वो फल है मोक्ष। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम्, आती है ना पंक्ति, कि जिसको मोक्ष चाहिए उसको कभी मोक्ष होता ही नहीं है, जिसको सुख चाहिए उसको कभी सुख होता ही नहीं है, क्योंकि चाह उसकी अभी चल रही है। जिसने अपने आप को परिपूर्ण सुख का पिंड, त्रिकाली ध्रुव पिंड अनुभव किया है, माना है, उसके लिए सुख भी है, ज्ञान भी है और मोक्ष भी है, और वो हो तो हो। बात समझ में आ गई? निहाल भाई जी की भाषा में कहे तो केवल ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान का भाषा तो ऐसी कि मैं बाप हूं। मैं केवल ज्ञान रूप नहीं, केवल अर्थात मात्र ज्ञान रूप हूं, ज्ञान का पिंड हूं। कि प्रमाण में क्या है कि जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु पक्षातिक्रांत है, उसी के अनुकूल जो विकल्प है वहीं तक प्रमाण है। उसके बाहर जाने वाले व्यक्ति को प्रश्न करते हैं कि कैसे प्राप्त हो, कि कैसे प्राप्त हो, कि प्राप्त कैसे करूं, ये भी विचार गलत है। मैं अपने आप में प्राप्त ही हूं, मुझे कहीं प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। पक्षातिक्रांत होने के लिए क्या करें? कि जैसे किसी को कहीं जाना ही नहीं है तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी क्या? कोई विधि विधान, यहां से कहीं दूर जाना है तो कौन से मार्ग से जाऊं, रेल के, बस के, प्लेन के, कौन से मार्ग से जाऊं? विधि विधान तो उसको चाहिए जिसको कहीं बाहर जाना है, और जिसको स्वरूप में ही रहना है, घर में ही रहना है, उसको न तो तैयारी की आवश्यकता है न किसी विधि विधान की आवश्यकता है। ये मोक्ष मार्ग है, पक्षातिक्रांत होने का ये तरीका है। अपने आप को जीव ने उलझा लिया है बहुत दूर तक, कि अपने आप को परिपूर्ण अनुभव नहीं किया, कि प्रमाण में से दृष्टि का विषय। देखो चेतन भाई चला ही रहे हैं, चौथा बोल चल ही रहा है। गुणों का निषेध नहीं है, गुण भेद का निषेध है। चौथे बोल में किसका निषेध है? गुण भेद का निषेध है। गुणों का निषेध वहां पर नहीं है। ऐसे ही यहां जो चैतन्य संबंधी विकल्प है, वो विकल्प नष्ट होते ही चैतन्य वस्तु त्रिकाली ध्रुव वस्तु तो वही है, कहीं देखने जाने की आवश्यकता नहीं। कहां है? अभी तो भाषा है कि विकल्पों के पार है, पर्याय के पार है, ये तो भाषा है। कहां पार है, कहां है? कि कि विकल्पों के पार है ऐसी भी पर्याय बोलती है तो पर्याय ने अपने आप को भी अभी सही नहीं समझा है। समझ में आ रही है बात कि पर्याय जब द्रव्य की भाषा बोलती है तो समझ लेना पात्रता शुरू होती है। पर्याय यदि क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय यदि क्षयोपशम की भाषा बोलती है तो अभी उस ज्ञान पर्याय में पात्रता का जन्म ही नहीं हुआ है। पर्याय जब त्रिकाली की भाषा में बोलती है त्रिकाल रूपी अपने आप को अनुभव करती है सविकल्प अनुभव, प्रकाश भाई जी ने सुबह उसको सविकल्प अनुभव बताया कि जैसी वस्तु है। आत्मार्थी और ज्ञानी के दो अलग अलग लक्षण बताए थे, ध्यान है। आत्मार्थी किसको कहते हैं कि जैसा आत्मा अनुभव में आता है या आएगा, कि जैसा आत्मा अनुभव में आएगा वैसा आत्मा जिसे अभी अनुमान में आया है वो तो आत्मार्थी है, बराबर है। और जैसा आत्मा अनुभव में आया जहां अभेद हो गया वो ज्ञानी है। ज्ञानी को आत्मा प्रत्यक्ष है और आत्मार्थी को आत्मा अभी अनुमान में है, बराबर है। ये सुबह आपका विषय था, समझ में आ गया। आत्मार्थी और ज्ञानी में क्या फर्क किया था कि आत्मार्थी वो है जो जैसी चैतन्य वस्तु त्रिकाल एक रूप है वो अभी सविकल्प दशा में, कौन सी दशा में, सविकल्प दशा में जैसी वस्तु है वैसी वस्तु अनुमान में आती है तो वो आत्मार्थी है और वो वस्तु अनुभव में आती है तो वो ज्ञानी है। बात समझ में आ गई। यहाँ क्या लिखा है कि श्रुत ज्ञान अवस्टम्भ, जैसे कोई खुद चल नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है तो लकड़ी का सहारा लेता है। अवस्टम्भ का मतलब है सहारा, क्योंकि ज्ञान पिंड को अपने से निर्णय नहीं हो पाता है तब, बात समझ में आ गई, गुरुमुख से सुना लेकिन खुद निर्णय नहीं कर पाया है तो क्या करेगा, अवस्टम्भ। जैसे शक्ति नहीं है खुद में तो सहारा लेते हैं। सहारा किसको, कि जिसके पास शक्ति नहीं है। यहाँ कौन से शक्ति की बात है कि पर्याय में त्रिकाली चैतन्य वस्तु को अनुभव करने की शक्ति नहीं है। अब शक्ति नहीं है तो कैसी बात चलेगी, 54 शक्ति और 47 शक्तियाँ तो शक्तियों का पिंड है, और शक्तियाँ कितनी, अनंत भी कितने, कि जीव राशि अनंत है, जीव राशि से अनंत गुणे पुद्गल है, पुद्गल से अनंत गुणे तीन काल के समय है, और तीन काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश है, उससे भी अनंत गुणे गुण मुझ में है। बात समझ में आ गई। इतनी तो शक्तियां हैं, शक्तियों का पिंड है। बात समझ में आ गई। शक्ति तो है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया। जिन ज्ञानियों ने अपनी शक्ति का उपयोग किया वो सिद्धालय में है। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान की परिणति नहीं है। सभी जीवों में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान की परिणति नहीं है। क्यों, कि ज्ञान की परिणति कब उत्पन्न होती है, कि ज्ञान में ज्ञान न झलके, ये चर्चा चला रहे ना प्रकाश भाई जी, दर्पण में मोर झलकता है, क्या झलक रहा है, मोर झलक रहा है। अब मोर को झलकाने के लिए तो दर्पण है, और दर्पण को झलकाने के लिए क्या है, मोर को झलकाने के लिए तो दर्पण है, और दर्पण को झलकाने के लिए है? बात समझ में आ गई कि दर्पण को झलकाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। वो जो विषय चल रहा है उसमें तो अलग बात है कि जो मोर में ही झलकता, दर्पण में दर्पण ही झलकता है, दर्पण में दर्पण ही झलकता है। और आगे चल करके ये बात है कि दर्पण की पर्याय में दर्पण नहीं झलक रहा है, बल्कि दर्पण का जो दल है, द्रह है, वो झलक रहा है। आबाल गोपाल सभी को वही झलक रहा है, कौन कि जो दृष्टि का विषय है, लेकिन वो झलकते हुए भी निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहां भी छोटा सा जवाब दिया कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम निश्चित्य, अभी निर्णय नहीं किया। यहां से जवाब क्या मिलेगा इस गाथा में से कि 16वीं 17वीं गाथा में ये बात आई है कि आबाल गोपाल सभी को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा झलकने में आ रहा है, झलक रहा है, फिर भी अनुभव में आता हुआ भी अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें एक शब्द दिया निश्चित, ज्ञानी को निश्चित्य है, इसलिए उनको हर पर्याय में वही झलकने में आ रहा है। और अज्ञानी को निश्चित्य शब्द है ना इसमें कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जैसा है वैसा निर्णय नहीं हुआ, इसलिए जानने में आता हुआ भी जानने में नहीं आ रहा। पकड़ में आ गई बात कि जानने में आता हुआ भी दृष्टि का विषय, बात समझ में आ गई। सभी को अपना अपना काम करना है, कोई करा दे ऐसा भी नहीं है, कोई समझा दे ये बात भी नहीं है। सही बात तो है कि समझन के पिंड को समझने की भी आवश्यकता नहीं है, समझ में इतनी सी ही समझ हो कि मैं समझ का पिंड हूं इतनी सी समझ रहे, बात समझ में आ रही है कि इतनी सी ही है कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम, इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य जो ज्ञान का पिंड है, वो ज्ञान का पिंड यहां ज्ञान शब्द से कहा गया। बात समझ में आ गई। क्या लिखा है बेंसरी के जो चर्चा प्रश्नोत्तरीय स्वानुभूति दर्शन में, गुरुगम के बिना शब्दों का अर्थ जाना जाता है मर्म नहीं। क्या लिखा है? गुरुगम के बिना शब्दों का अर्थ जाना जाता है मर्म नहीं। ये ज्ञान का ज्ञान अर्थ करना ये तो केवल शब्दार्थ हुआ। बात समझ में आ गई। ज्ञान का ज्ञान अर्थ करना ये क्या हो गया? शब्दार्थ है। और इसमें से प्रयोजनभूत अर्थ क्या है या वास्तविक मूल अर्थ क्या है कि दिव्य ध्वनि में यहाँ ज्ञान का अर्थ ज्ञान पर्याय नहीं, ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का पिंड शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, जिसको ज्ञान शब्द के द्वारा कहा जाता है, वो ज्ञान का पिंड यहाँ ज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया। बात समझ में आ गई। ऐसा जो ज्ञान है, पर्याय वाले ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, पर्याय में कितना भी ज्ञान का उगाड़ हो उससे भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, पर्याय में इतना सा निर्णय हो, बहुत बड़े निर्णय की आवश्यकता नहीं है, पर्याय में इतने से निर्णय की आवश्यकता है, कितने से, बात समझ में आ गई कि मैं ज्ञान का पिंड हूं इतने से निर्णय की आवश्यकता है। उस निर्णय के लिए यह शब्द लिखा निश्चित्य। क्षयोपशम ज्ञान का बहुत प्रयास जीव ने किया, क्षयोपशम ज्ञान के लिए हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा बैठना भी व्यर्थ है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञान पिंड को देखने के लिए, उसको लक्ष्य बनाने के लिए, उसमें लीन होने के लिए बैठे हैं तो लक्ष्य सही है, क्योंकि ज्ञान के उघाड़ से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। ये जो बोलना करना ये है, वास्तव में ये भी विद्वान के प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, बल्कि अटकाने वाला हो सकता है। लक्ष्य यदि लक्ष्य में से निकल गया तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। लक्ष्य जिसको रमणीय नहीं लगे, कितने गुण हैं मुझ में, वास्तव में खरेखर ईमानदारी से कहे तो जीव ने अपना कभी आदर सम्मान किया ही नहीं। पर का पर्याय में आदर किया, सम्मान किया, लेकिन अपना आदर सम्मान कभी किया ही नहीं। अपना आदर सम्मान करे और अपने आप को परिपूर्ण देखे और परिपूर्ण रूप अनुभव करे, गलती क्या हो रही है? बाहर के वैभव की तो महिमा आ जाती है, लेकिन अपने चैतन्य ज्ञायक ध्रुव पदार्थ की महिमा नहीं आती। आनी क्यों चाहिए? कि जिससे सभी प्रयोजनों की सिद्धि होती है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, और तो और छोड़ो, इसकी चर्चा सुनने के लिए भी बहुत अच्छा नहीं लगता। और स्वामी जी पद्मनंदी पंचविंशतिका की वो पंक्तियां याद करते हैं कि तत् प्रति प्रीति चित्तेन, सुना है कि अपनी चर्चा सुनने के लिए जिसको बोझा लगता है, इसका अर्थ यह है कि इसने अपने आप को चैतन्य स्वरूप अनुभव ही नहीं किया है। कि ज्ञान अवस्तम्भेन शब्द दिया यहां पर, कि जिसमें त्रिकाली ध्रुव को सीधे पकड़ने की शक्ति नहीं है, या जिसने पूरा प्रयास नहीं किया है। पूरा प्रयास करे तो शास्त्र के अवलंबन की आवश्यकता न रहे। कि श्रुत ज्ञान अवस्तम्भेन, कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना, कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना। क्या कह रहे हैं? शब्द लिखा है अवस्तम्भ। अवस्तम्भ का अर्थ होता है आधार, सहारा, अवलंबन। ये संस्कृत पढ़ने के फायदे हैं। अवस्तम्भ का अर्थ क्या है? आधार, सहारा, अवलंबन। कि जिसकी पर्याय जिसकी है, उसको उस अपने से निर्णय नहीं करती है, अनुभव नहीं करती है, उसके लिए अवलंबन की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखा है? श्रुत ज्ञान अवस्तम्भ, श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना। गाथा कौन सी है? पक्षातिक्रांत की है। तो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना ये भी पक्ष है। क्या है? श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना ये भी क्या है? पक्ष है। ये सुनना, सुनाना, शिविर लगाना, आना जाना, ये भी सब पक्ष है। एक अकेली निर्विकल्प दशा ही निष्पक्ष दशा है, कि चौथे काल में भी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वरूप नियत है, मोक्ष मार्ग नियत है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की विधि भी नियत है, और उसके लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो भी नियत है। पुरुषार्थ भी नियत, मोक्ष भी नियत, वस्तु भी नियत। अब करना क्या है? कि अनियत बुद्धि को उस नियत के अनुसार ढालना है, बस इतना ही करना है, वस्तु को बनाना नहीं है। चेतन भाई जी ने लिया था उसे कि भगवान बनाना के बताना है, भगवान बनाना नहीं, बनाना ही में तो कोई और बात आ जाएगी कि मैं भगवत स्वरूप हूं, भगवान चैतन्य ज्ञायक, भगवान आत्मा अनादि काल से भगवान स्वरूप ही है, 72वीं गाथा में तो कहा गया, लेकिन है कब से कि 71वीं गाथा तक नहीं था क्या वो है? 72वीं गाथा में अमृतचंद्र स्वामी जी ने वो भगवान आत्मा कहकर सभी जीवों को पुकारा तो 71वीं गाथा तक नहीं था क्या है? अनादि से प्रत्येक जीव अपने आप में परिपूर्ण ही है, अखंड ही है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, उसको पर्याय की भी आवश्यकता नहीं, पर्याय को उसकी आवश्यकता हो तो हो, लेकिन पर्याय भी अपने आप को पर्याय रूप आवश्यकता पूर्ति करना चाहे तो पर्याय की आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं होती है, पर्याय भी उसे निज रूप जान करके आवश्यकता की पूर्ति करना चाहे तो पर्याय की पूर्ति हो सकती, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का निर्णय करने के लिए किसका आश्रय लेना कि ये भी पक्ष वाली दशा है कि पहले हम गाथा समझ ले उसके बाद पक्षातिक्रांत हो जाएंगे, तेरे मन में खोट है, तू कभी पक्षातिक्रांत हो ही नहीं सकता क्योंकि तुझे अभी गाथा समझने का भी पक्ष पड़ा हुआ है, है? अरे तुझे समझने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई कि पर्याय को भी जब तक पर्याय का पक्ष रहता है तब तक पर्याय भी अपने आप में अधूरी है, पर्याय भी जब अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करती है तब जाकर के पर्याय में ज्ञान स्वभावम आत्मानम निश्चित। समझ में आ रही बातें? क्या शब्द लिखा है? निश्चित। निर्णय करके, निर्णय किसका करना है कि मैं सो ज्ञान और ज्ञान सो मैं, लेकिन ज्ञान कौन सा? मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव पिंड, वो ज्ञान पर्याय वाले ज्ञान की यहाँ चर्चा नहीं है। इसका निर्णय करके फिर आगे ततः उसके बाद, उसके बाद का अर्थ क्या है भैया? नींद तो नहीं आ रही ना? स्वामी जी के निमित्त से समोसरण की बातें, चौथे काल की बातें, कोई विशेष जाति का पुण्य का उदय था तो सुनने को मिल गई, और यहां भी सो जाओगे तो क्या लिखा है? ततः शब्द क्या लिखा है? ततः, उसके बाद। उसके बाद का मतलब क्या है कि भले ही अभी सविकल्प दशा में हो, सविकल्प दशा में रहना कोई दोष नहीं है, लेकिन सविकल्प दशा में लक्ष्य को तय किए बिना रहना यह दोष है। बात समझ में आ गई? अभी भी सविकल्प दशा है, ततः शब्द लिखा ना, उसके बाद अभी निर्विकल्प नहीं हुआ। यदि ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करके, निर्णय भी दो प्रकार का, कौन सा निर्णय कि एक तो अनुभव रूप निर्णय, अभेद रूप निर्णय, और एक है सविकल्प दशा का निर्णय जिसको प्रकाश भाई जी अनुमान तक पहुंचने वाली बात कहते हैं कि कितने ही जीव अनुमान तक पहुंचते और वहां से वापस आ जाते हैं। बात समझ में आ गई कि निर्णय यदि सविकल्प दशा वाला है, अभी लक्ष्य तो तय हुआ है, ये लक्ष्य है लेकिन अभी सविकल्प दशा में है तो क्या करें। ततः शब्द समझ में आ गया, क्या है ततः मतलब उसके बाद। उसके बाद मतलब किसके बाद सब, कि शास्त्र पढ़ लिए, क्षोभम ज्ञान का उगाड़ हो गया, ये उसके बाद ये नहीं। क्या समझना है कि लक्ष्य तय होने के बाद, दृष्टि का विषय पकड़ में आने के बाद, पकड़ मतलब अभेद रूप से अनुभव वाला हो तो उसके बाद तो ततः तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई। ततः मतलब उसके बाद, किसके बाद, कि ये मेरे दृष्टि का विषय है। द्वादशांक को पढ़ करके मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे तो अपने स्वरूप में रहने से ही प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। ऐसा जिसको समझ में आ गया तो क्या करे उसके बाद, कि ततः तो आत्मख्यात है। अगला शब्द क्या है, देख रहे हो, दिख रहा है दूर तक पीछे तक, ततः खलु आत्मख्यात है। खलु शब्द क्यों लिखा है पंडित जी, अरे वास्तविक अर्थ नहीं है, तेरे अभिप्राय में खोट नहीं हो तो इसलिए खलु शब्द लिखा। तेरे अभिप्राय में अभी विद्वत्ता का ही अभिमान हो कि मैं दूसरों को समझाऊं। बात समझ में गई कि जो मिला है उसको सर्व प्रयत्न से प्राप्त करूं, ये उद्देश्य न रख करके जो मुझे समझ में आ गया उसको दूसरों को समझाऊं। बात समझ में आ गया, तेरे अभिप्राय में पूरी प्रामाणिकता है तो, कौन सा शब्द है खलु, तो पूरी प्रामाणिकता है तो क्या कर, कि आत्मख्यात है। कौन सा शब्द लिखा है, पहले शब्दार्थ बता देता हूं, आत्मा की प्रसिद्धि के लिए। बात समझ में आ गई, आत्मा की ख्याति के लिए, आत्मा की प्रसिद्धि के लिए। क्या अर्थ है कि सविकल्प दशा में मतलब सविकल्प भूमिका में, एक बात और याद रखना, याद क्या रखना, मैं अपने लिए बोलता हूँ ये चीजें, ये ज्ञानी की सविकल्प दशा होती है लेकिन ज्ञानी का निर्णय सविकल्प नहीं होता, कि मैं तो निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य ही हूं सदाकाल। दशा भले ही सविकल्प होती है लेकिन उसकी दृष्टि कभी सविकल्प नहीं होती है। ज्ञानी की दृष्टि तो निर्विकल्प अखंड चैतन्य पिंड पर ही रहती है, दशा सविकल्प होती है। बात समझ में आ गई कि सविकल्प दशा में जिसका अनुभव नहीं हुआ, उसकी सविकल्प दशा में जो दृष्टि का विषय था वो तो सविकल्प था। अब उस सविकल्प दशा में से निर्विकल्प चैतन्य आत्मा की ख्याति के लिए, आत्मख्याति कौन सा शब्द है, आत्म
सविकल्प निर्विकल्प ज्ञान और चालीस से है कि मात्र ज्ञान से ही,
अभी तो अनुभूति की दृष्टि से ज्ञान से ही है, ज्ञान में ही शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव में आ जाए। दोष दो बताए ना भाई जी, चेतन भाई जी ने, कि अस्थिरता का दोष और अभिप्राय का दोष, तो वो अभिप्राय का दोष तो एक समय में निकल जाएगा, और अस्थिरता का दोष जो चारित्र संबंधी वो धीरे धीरे निकलेगा। तो यहाँ जो बात है वो ज्ञान की है, ज्ञान में अनुभूति होते ही चारित्र में आंशिक स्थिरता भी ज्ञानी के अवश्य होती, अस्थिरता ही मतलब स्थिरता न हो तो अनुभूति का क्या फायदा हुआ। तर्क समझ में आ गया कि पूर्व की तरह ही अस्थिरता रही, सम्यक दर्शन या ज्ञान की आत्मा की अनुभूति होने के बाद वैसी ही अस्थिरता रही तो क्या फायदा हुआ। बात समझ में आ गई। तो वो तो होती ही है, इसलिए यहाँ तो ज्ञान की बात है। अब दोबारा पढ़ते हैं, आत्मख्याते। आत्मख्याते का मतलब क्या? कि जो चैतन्य वस्तु, ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु अभी सविकल्प दशा में लक्ष्य के रूप में निर्णित तो हुई, लेकिन उसकी अभी ख्याति नहीं। जो अभी सविकल्प दशा में जिसकी जिसका निर्णय तो हुआ सविकल्प रूप से, लेकिन निर्विकल्प रूप से उसका अनुभव नहीं हुआ है, उसकी निर्विकल्प अनुभूति के लिए, उसकी निर्विकल्प बने प्राप्ति के लिए आत्मख्याते शब्द है, जोड़ना एक दूसरे से। अब आत्मख्याते ये भी पक्ष वाली ही दशा है, यहां भी पक्षातिक्रांत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? उसके लिए आगे तीसरा शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? नहीं, परख्याति नहीं। पहले तो ज्ञान आगम का अवलंबन लेकर मोटी मोटी तीन बातें, फिर मति ज्ञान को आत्मसम्मुख करके, और तीसरी बात श्रुत ज्ञान के विकल्पों को शांत करके। सुबह स्वामी जी के प्रवचन में आई थी बात, हाँ, श्रुत ज्ञान के जो विकल्प है, श्रुत ज्ञान के नए संबंधी जो विकल्प है, वो तीसरी बात थी। अब ये क्या है कि सापेक्ष बात है। आत्मख्यात है तो आत्मख्याति दो प्रकार की, एक सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प आत्मख्याति हो जाए तो तीसरे बिंदु की आवश्यकता नहीं। जैसे निर्णय पहले ही हो जाए, यथार्थ निर्णय, तो दूसरे बिंदु की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे में भी यथार्थ निर्णय हो जाए तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सविकल्प भी है और निर्विकल्प भी है। आत्मख्यात, आत्मख्याति तो टीका का भी नाम है, आत्मख्याति टीका का भी नाम है। आत्मख्याति के लिए क्या करना है कि मति ज्ञान को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक परमेश्वर की ओर सम्मुख करना। क्या शब्द आया? मति ज्ञान को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के सम्मुख करना, मर्यादा में लाना कहो या सम्मुख करना। अब सम्मुख करने का अर्थ क्या है? आज का समय तो हो गया है, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा सभी के पर्याय में सदाकाल विराजमान रहे, इसी भावना से आज का समय।
Thank you.